नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। चंपावत जिले के टनकपुर में उत्तर भारत के प्रसिद्ध मां पूर्णागिरी मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वैश्विक वित्तीय कंपनी मॉर्गन स्टैनले ने कहा है, भारत वर्ष 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। प्रदेश में चारधाम यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा और मौसम विभाग ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला और अब समाचार विस्तार से। चंपावत जिले के टनकपुर में उत्तर भारत का प्रसिद्ध मां पूर्णागिरी का मेला शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने मेले को वर्षभर संचालित करने और स्थायी बुनियादी ढांचे के विकास की प्रतिबद्धता जताई। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मेले में भीड़ और आपदा प्रबंधन के लिए ठूलीगाड़ में स्मार्ट कंट्रोल रूम और सीसीटीवी निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा सेलागाड़ में बहुउद्देशीय प्रशासनिक भवन बनाया जाएगा, जिसमें मेला मैजिस्ट्रेट, मेला अधिकारी, पुलिस और चिकित्सकों के लिए एकीकृत कार्यस्थल होगा। उन्होंने लादीगाड़ में पूर्णागिरी पंपिंग पेयजल योजना और ठूलीगाड़ बाबलीगाड़ पंपिंग परियोजना की भी घोषणा की। श्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार मां पूर्णागिरी धाम को एक प्रमुख आध्यात्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत कुमाऊं के प्रमुख मंदिरों का सौंदर्यीकरण और मार्ग चौड़ीकरण किया जाएगा। उन्होंने पूर्णागिरी में रोपवे निर्माण कार्य की भी जानकारी दी, जिससे श्रद्धालुओं को यात्रा में सुविधा मिलेगी। वैश्विक वित्तीय कंपनी मॉर्गन स्टैनले ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत वर्ष 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था 35 खरब डॉलर की थी और अनुमान है कि वर्ष 2026 तक यह 47 खरब डॉलर हो जाएगी।
मॉर्गन स्टैनले के अनुसार 2028 में भारत की अर्थव्यवस्था बढ़कर 57 खरब डॉलर की हो जाएगी और भारत जर्मनी से आगे निकल जाएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत दुनिया के सबसे अधिक मांग वाले उपभोक्ता बाजार के रूप में उभरा है और उसकी वैश्विक आर्थिक रैंकिंग में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ये असाधारण बढ़ोतरी संयोग से नहीं बल्कि वर्षों के दूरदर्शी नेतृत्व और साहसिक आर्थिक सुधारों का परिणाम है। सोशल मीडिया पोस्ट में पार्टी ने कहा है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाला है, तब से बदलाव का दौर शुरू हो गया है। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहल ने औद्योगिक नवाचार को प्रोत्साहित किया है, जिसकी वजह से गांव विनिर्माण केंद्रों और शहर संपन्न आर्थिक केंद्रों में बदल गए हैं।
ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2025 संपन्न हुआ। महोत्सव में 75 देशों से 1500 से अधिक योग साधकों ने भाग लिया। समापन अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि गंगा तट पर आयोजित यह अनूठा योग समागम न केवल भारत और उत्तराखंड की प्राचीन परंपरा का प्रतीक है, बल्कि योग के वैश्विक प्रभाव को भी दर्शाता है। योग साधकों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि वे योग के ब्रांड एम्बेसडर हैं और इसका विश्वभर में प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने सभी लोगों से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कार्यक्रमों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए टिहरी जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सांस्कृतिक दलों के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सुर सरिता सांस्कृतिक दल ने जिला अस्पताल में नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर लोगों को कन्या भ्रूण हत्या, एचआईवी और जननी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। टिहरी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ श्याम विजय ने बताया कि स्वास्थ्य संबंधी जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए गोष्ठियों, जागरूकता कार्यक्रमों और नुक्कड़ नाटकों को प्रभावी माध्यम बनाया जा रहा है। साथ ही समाज में फैली स्वास्थ्य संबंधी भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास भी किया जा रहा है। सुर सरिता दल के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए कन्या भ्रूण हत्या के दुष्परिणामों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यदि बेटी नहीं बचेगी तो जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने बेटियों को सशक्त बनाने और समाज में उन्हें सम्मान देने की अपील की। अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन नामांकन शुरू हो गए हैं। नामांकन की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और सिफारिशें केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन स्वीकार की जाएंगी।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध है।
प्रदेश में चार धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। यात्रा को सकुशल व सुरक्षित सम्पन्न कराने के लिए प्रशासन शासन अलर्ट हो गया है। यात्रा के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए मार्गों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के एचओडी राजेश चंद शर्मा ने कहा कि बारिश के मौसम में यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग राजमार्गों को गड्ढा मुक्त किया जा रहा है।
गड्ढा मुक्त करने का ये होता है कि जो पैच बनते हैं, पैच बनना और उनको बनाना एक सतत प्रक्रिया है। अभी पिछली बार हम लोगों ने सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को और अपने राज्य जितने भी हमारे स्टेट हाईवे है सबको गड्ढा मुक्त कर दिया गया था। अभी आपको पता है कि इस समय बीच में फिर दोबारा से बारिश वगैरह जो हुई है उसमें पैचेस बने हैं, तो उसको हम पूरी कोशिश करेंगे कि 30 अप्रैल से पहले उन सबको भी गड्ढा मुक्त कर दिया जाए।
प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत को छोड़कर राज्य के अन्य हिस्सों में आज बारिश हो सकती है। विभाग ने राज्य के 3,200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी का अनुमान भी जताया है। इस बीच पिछले दो दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई, जिसके चलते तापमान में हल्की गिरावट भी दर्ज की गई है। चमोली स्थित औली में 16 से 19 मार्च तक प्रस्तावित स्की एंड स्नोबोर्ड की राष्ट्रीय चैंपियनशिप प्रतियोगिता बर्फ कम होने के चलते स्थगित कर दी गई है। विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने चैंपियनशिप स्थगित होने की सूचना सभी राज्यों को दे दी है। स्की माउंटेनियरिंग के अध्यक्ष अजय भट्ट ने बताया कि अब औली और गोरसों में स्की माउंटेनियरिंग का आयोजन किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक को ब्रिटेन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है। केंद्रीय बैंक को प्रवाह और सारथी नाम की डिजिटल पहलों के लिए सम्मानित किया गया है। इन्हें बैंक की इन हाउस टीम द्वारा विकसित किया गया था। पुरस्कार समिति ने कहा है कि इन डिजिटल पहलों से कागज के इस्तेमाल में कमी आई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कल देहरादून में मसूरी विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को अनारवाला मालसी मोटरमार्ग पर निर्माण कार्य तत्काल करवाने के निर्देश दिए। श्री जोशी ने मसूरी शहर में सड़कों की स्थिति को ठीक करने और मोतीलाल नेहरू मार्ग में निर्माण कार्य को जल्द पूरा करवाने को कहा। प्रदेश में संचालित 71 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों को अपग्रेड करते हुए इनमें आधुनिक सुविधाएं जुटाई जाएंगी। निदेशक तकनीकी शिक्षा देशराज ने बताया कि इसके तहत इन संस्थानों में स्मार्ट क्लासरूम और वर्चुअल लैब स्थापित की जाएंगी। साथ ही नए क्लासरूम, प्रशासनिक भवन, पुस्तकालय, हॉस्टल, लाइब्रेरी सहित अन्य निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 10 पॉलिटेक्निक संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। राजधानी देहरादून स्थित श्री दरबार साहिब में संगतों के पहुंचने का सिलसिला तेज होता जा रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों से, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। साथ ही मेला क्षेत्र में दुकानों की साज सजावट को लेकर मेला बाजार दुकानदारों के चेहरे पर रौनक है। श्री झंडे जी मेले की प्रबंधन समिति का अनुमान है कि पवित्र श्री झंडे जी के आध्यात्मिक दर्शन का लाभ उठाने के लिए लाखों की संख्या में संगत पहुंचेंगे। रुद्रप्रयाग जिले में ऊखीमठ ब्लॉक के डामर गांव में एक महिला पर गुलदार ने घात लगाकर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला को अगस्त्यमुनि अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चंपावत जिले के टनकपुर में उत्तर भारत के प्रसिद्ध मां पूर्णागिरी मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वैश्विक वित्तीय कंपनी मॉर्गन स्टैनले ने कहा है, भारत वर्ष 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। प्रदेश में चारधाम यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा। और मौसम विभाग ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। आपसे अगले समाचार बुलेटिन में शाम 6:30 बजे फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।